परमपिता परमात्मा के चरणों में ध्यान करने के बाद अब हम 13वें अध्याय पर वापस लौटते हैं। 13वें अध्याय में हमें स्पष्ट होता है जीवन के दो महत्वपूर्ण डायमेंशंस, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हमेशा से विज्ञान कहता आया है कि अचानक से एक दिन ब्रह्मांड में धमाका हुआ और सब जो जहां होना चाहिए था होता चला गया। धीरे 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 निर्जीव अणु परमाणुओं से मिलकर जीव प्रकट हुए, जीवों का विकास होता चला गया और वो मानव जैसे जीवों में धीरे 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 विकसित होते चले गए। लेकिन विज्ञान की इस शोध में, इस सत्य के पीछे भी कुछ नए वैज्ञानिक, रॉबर्ट लांचा जैसे वैज्ञानिक कहते कि नहीं, कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ उसमें गड़बड़ रह गई। कोई तो जीवन शक्ति है, कोई तो ऐसी अद्भुत शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो सब चीजों को व्यवस्थित कर रही है, इन सारे निर्जीव पदार्थों को एक ओरिएंटेशन देती है, एक दिशा देती है, एक नियम से उन्हें काम करने की ओर प्रेरित करती है। तो बायोसेंट्रिज्म वो एक अपनी थियरी देते हैं जिसमें कहते हैं कि जीवन ऊर्जा तो है, ऐसे तो नहीं हुआ, अनायास ही जीवन प्रकट हुआ है, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। तो क्योंकि विज्ञान के सारे उपकरण, विज्ञान की सारी विधियां उस क्षेत्रज्ञ को पकड़ नहीं पाती, पदार्थ तक सीमित है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां विज्ञान खत्म होता है अध्यात्म वहां से शुरू होता है। तो विज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान की फिर वो क्षेत्र पर काम करती है, मटेरियल पर, ऊर्जा पर, उस पर काम करती है, और उसके परे जो उस मटेरियल को चलाने वाला तत्व है उसे हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वो चैतन्य, और प्रकृति और पुरुष के नाम से भी उसे जाना जाता है। ये हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि चैतन्य जब प्रकृति के साथ एकाकार में प्रकट होता है तो जीव, और फिर प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों को वो अपने भीतर अनुभव करता है और उसी के अनुरूप जो है फिर उसे अच्छा या बुरा देखने को, महसूस करने को मिलता है। तो भगवान ने कहा कि जो पुरुष यानी जो चैतन्य हमारे भीतर है, जो वो परम तत्व हमारे भीतर है, वही हमें सामर्थ्य देता है देखने की, जो हम बोल रहे हैं उसे देखने की शक्ति वो हमें देता है, जो हम देख रहे हैं उसे भी देखने की। आप देख रहे हैं ये देखना, आप बोल रहे हैं उसको देखना, आप सुन रहे हैं इसको भी देखना। तो वो जो दृष्टा हमारे भीतर बैठा है वो चैतन्य है, वो उसे पुरुष कहा। और भगवान ने कहा कि जो साधक हैं वो कैसे करते हैं, कैसे जीवन को जीते हैं, तो 13वें अध्याय के 24वें सूत्र में उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा सूत्र प्रकट किया। ये जो श्लोक है वो कहता है कि जो साधक हैं वो आत्मा में, यहां पहली बार जब आत्मा का शब्द का प्रयोग हुआ तो वो अपनी बुद्धि में, आत्मा से, आत्मा से मतलब अपने शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखते हैं, उस परम आत्मा को देखते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में सूक्ष्मता प्रकट होने लगती है, हमारी बुद्धि धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि जो मैं बोल रहा हूं, ये जो स्पंदन ध्वनि के मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं, ये स्पंदन कैसे प्रकट हो रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, जो मैं देख रहा हूं वो मुझे क्यों दिख रहा है, उसके पीछे की वो शक्ति क्या है, उसका वो सोर्स क्या है। तो बुद्धि की मदद से जो यहाँ पहले शब्द में भगवान ने कहा आत्मा की मदद से उस बुद्ध, तो यहाँ आत्मा को अब ज्ञान शक्ति बुद्धि के रूप में भगवान ने पहले शब्द में प्रयोग किया कि आत्मा से। और क्या करते हैं उस आत्मा से कि आत्मा में अपनी बुद्धि में आत्मा से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मा को देख पाते। तो यहां उस दृष्टा को स्पष्ट किया। दृष्टा कहते किसे हैं कि जब हमें जीवन में वो क्लैरिटी आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। कैसी स्पष्टता हमें आ जाती है कि हमारी बुद्धि में एक साफ हमें दिखाई देने लगता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हमें किसी से द्वेष नहीं, हमें किसी से घृणा नहीं, हमें किसी का कुछ लालच नहीं, हमें किसी प्रकार का मोह नहीं, हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं। जब हमारा अंतःकरण इतना पवित्र और साफ होता है तो उसमें झलक दिखाई देने लगती है, साफ दिखाई देने लगता है। वो आत्म तत्व, वो परम तत्व जिसे आप ईश्वर कहते हैं। और भगवान ने कहा कि कुछ लोग जो है इस अपनी आत्मा में, आत्मा से उस आत्मा को देखते हैं, कुछ लोग जो है वो कर्म योग के द्वारा भी इसे देखते हैं। कर्म योग के द्वारा इसे देखते हैं मतलब कि जब आप कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं, किसी प्रकार के भी कर्म में जब आप प्रवृत्त होते हैं, तो उस कर्म को करते समय जब आप पूरी तरह से कर्ममय हो जाते हैं, कुछ पीछे बचता नहीं, कुछ पीछे छूटता नहीं, आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं, घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं, सिर्फ वो कर्म वो क्रिया रह जाती कुछ नहीं, तो भगवान कहते हैं वो दृष्टा प्रकट होता है, वो आत्म तत्व। ऐसा लगता है वो आत्म तत्व उसका उसका जो वो जो केंद्र है, उस केंद्र को आप छू पाते, उसे आप स्पर्श कर पाते। तो हम परमात्मा को जो ढूंढने जाते हैं स्वर्ग की अवधारणा में, नरक की अवधारणा में, वहां पता नहीं मृत्यु के बाद कहां परमात्मा मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण हमें बाहर की दौड़, स्वर्ग की दौड़ और नरक की दौड़ वो उधर जाने को कहते नहीं, वो कहते जरा भीतर घूम जाओ, भीतर घूम जाओ और देखो कि जहां से तुम्हारे विचार प्रकट हो रहे उन विचारों के भी सोर्स तक चले जाओ, कहां से वो विचार प्रकट हो रहे, कैसे आ रहे हैं तुम्हारे भीतर वो विचार, उनके सोर्स तक चले जाओ। जो तुम महसूस कर रहे हो, जैसा तुम महसूस कर रहे हो, उसके सोर्स तक चले जाओ। और जैसे ही जो क्रिया, जो प्रतिक्रिया, जो विचार, जो घटित हो रहा है, उसके सोर्स तक जाने की कोशिश करो और तुम मुझे पालोगे। और भगवान कहते हैं भक्ति तो मार्ग है ही, अगर तुम्हारे ज्ञान में उतनी परिपक्वता नहीं है, तुमको नहीं समझ आता, तुमको नहीं समझ में आता आत्मा क्या है, तुमको नहीं समझ में आता वो परमात्मा वो पुरुषोत्तम क्या है, कोई बात नहीं। तुम्हारी बुद्धि में भगवान कहते हैं कि अगर वो सूक्ष्मता प्रकट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, वो तो एक मार्ग है। तो दूसरा मार्ग क्या है? तो भगवान कहते उपासना का मार्ग और श्रवण परायण। उपासना करो उस परमपिता परमात्मा की और उसके शब्दों को सुनो, और सुनते 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 उस सुनने में ही खो जाओ। जब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा श्रवण परिपक्व होगा, तत्क्षण तुम उसे अपने भीतर अनुभव करोगे, देन एंड देयर, क्योंकि उसे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, वो कहीं दूर है नहीं, वो निकट से भी निकटतम है। तो भगवान कहते हैं कि हम अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी उपासना के द्वारा उस प्रभु के वचनों को सुन के, उसके भजनों को सुन के हम उसमें खो सकते हैं, अपने कर्म के द्वारा हम खो सकते हैं, और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए हम उसमें खो सकते हैं। इस सारी बात में? भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में कि अर्जुन, जीवन का ये जो अनंत प्रवाह है, जीवन के इस अनंत प्रवाह में जो संभाव में स्थित होकर के लगातार बदलते हुए इस संसार में, नाश होते हुए इस संसार में, एक पेड़ को आप देखते हैं, पत्तियां टूट गई, डाली सूख गई और कई बार तो पेड़ ही सूख जाता है। तो भगवान कहते हैं इस नाशवान जगत में अगर तुम देख पा रहे हो कि वो जो पेड़ सूखा है, उसके फल गिरे, पक्षियों ने खाए और वो फल गिर करके और वो फिर कहीं और उसके बीज उग रहे हैं, वो पेड़ मरा नहीं है, उसका शरीर छूट गया है, पर उसके भीतर का जो जीवन तत्व है अब कहीं और विकसित हो रहा है, किसी और रूप में। उसके फल जो है वो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा शरीर बनकर जिंदा है, उसके बीज जो है अभी छोटे छोटे और पौधे बनकर जिंदा है, पक्षियों का शरीर बनके वो जिंदा है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस नाशवान जगत में जो उस परम तत्व को इस प्रकार देखता है समभाव के साथ, वही देखता है और वो मुझे पा लेता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ बचे हुए श्लोक और इस अध्याय के करेंगे। आज के लिए ओम तत्सत, परमात्मा ने नमः। ओम शांति 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 ही।